ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। जिला प्रशासन कार्यालय परसा ने आज शाम 6:30 बजे से कल दोपहर 12 बजे तक के लिए कर्फ्यू का आदेश किया जारी। सुकुम्बासी समस्या समाधान करने के लिए आगामी संसद अधिवेशन में विधेयक लाया जाएगा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन, जनता में निहित सार्वभौम सत्ता पर प्रहार करने वाले पर कड़ी कार्यवाही करने की गृहमंत्री लेखक ने जताई प्रतिबद्धता। नेपाल में दर्ज नहीं रहे सामाजिक संजालों को बंद करने की संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने दी चेतावनी। और अफ्रीकी देश कांगो में बच्चों के साथ होने वाली यौन हिंसा की दर उच्च है, यूनिसेफ ने दिया आंकड़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री की एवं नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने कहा कि दो बड़े दलों की सहभागिता में वर्तमान सरकार गठित होते ही देश के कदम राजनीतिक स्थायित्व, विकास और सुशासन के रास्ते पर बढ़ गए। नेकपा एमाले की झापा जिला कमेटी द्वारा आज दमक में आयोजित जागरण सभा में प्रधानमंत्री ओली ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर तमाशा करने वालों पर जनता विश्वास नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अपना देश स्वयं बनाने की भावना के साथ युवाओं को स्वदेश में ही रोजगार और उद्यम में लगाने के लिए सरकार जरूरी कदम चल रही है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि सुकुम्बासी समस्या समाधान के लिए आगामी संसद अधिवेशन के शुरू में ही विधेयक लाया जाएगा। गृहमंत्री रमेश लेखक ने जनता में निहित सार्वभौम सत्ता पर प्रहार करने वाले पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। आज बारा के सिमरा में तराई यातायात व्यवसायी संघ की 18वीं साधारण सभा का उद्घाटन करते हुए गृहमंत्री लेखक ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि गलती करने पर मंत्री प्रधानमंत्री तक पर कार्रवाई लोकतंत्र में हो सकती है, लेकिन गलती करने वाले राजा पर उंगली उठाने पर जेल की सजा भुगते हुए होने का इतिहास है। गृहमंत्री लेखक ने कहा कि 18 साल पहले नेपाली जनता द्वारा फेंके गए राजतंत्र के बारे में अनजान रहे किशोर किशोरियों को भड़काकर उनका प्रयोग करने जैसे कृत्य खेदजनक हैं। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि चैत मासांत तक में जो सामाजिक संजाल नेपाल में पंजीकृत नहीं होंगे उन्हें नेपाल में बंद कर दिया जाएगा। आज रूपनदेही में फोनिच के 8वें महाधिवेशन को संबोधित करते हुए मंत्री गुरुंग ने यह चेतावनी दी। उन्होंने साफ किया कि सामाजिक संजाल के अलावा अन्य ऑनलाइन मीडिया को बंद करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है। उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल ने कहा कि नेपाली कांग्रेस और नेकपा एमाले दो बड़े दल मिलकर सरकार बनाने से राजनीतिक स्थायित्व हुआ है। आज नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पा द्वारा तानसेन में आयोजित कार्यक्रम में अर्थमंत्री पौडेल ने ये बात कही। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस एमाले की संयुक्त सरकार ही देश में स्थायित्व दे सकती है। गंडकी प्रदेश के मुख्यमंत्री सुरेंद्र राज पांडे और सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ महेंद्र विष्ट के बीच पीएसपी नेपाल को प्रभावकारी बनाने और प्रादेशिक तौर पर सहकारी संबंध में विचार विमर्श हुआ। आज मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद कार्यालय में हुई बातचीत में मुख्यमंत्री पांडे ने कहा कि पीएसपी नेपाल को स्वरविहीनों की आवाजों को बुलंद करते हुए उभरना होगा। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो 4G नेपाल टेलीकॉम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलीकॉम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलीकॉम को 4G आफ्नो भन्य आफ्नै हो जी नेपाल टेलीकॉम को 4G
नेपाल टेलीकॉम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। चितवन के भरतपुर अस्पताल ने पॉलीथीन के झोले पर प्रतिबंध लगाया है। अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ कृष्ण प्रसाद पोडल के मुताबिक अस्पताल की फार्मेसी कैंटीन समेत सभी स्थानों में पॉलीथीन के झोले का प्रयोग प्रतिबंधित किया गया है। अस्पताल ने सभी से मरीज से मिलने जाने के दौरान कागज या कपड़े का झोला इस्तेमाल करने का मरीज के परिजनों से आग्रह भी किया है। तीनकुने घटना में मारे गए सविन महर्जन की बेटी के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध करने की कांग्रेस कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ ने प्रतिबद्धता जताई है। ये बताते हुए कि मृतक महर्जन के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की बात सामने आई है, कोषाध्यक्ष श्रेष्ठ ने कहा कि उनकी बेटी को 12वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध किया जाएगा। पितरों की मुक्ति की कामना से बौद्ध चैत्य में दिया जलाकर बौद्ध धर्मावलंबी तामांग समुदाय ने तेमाल यात्रा मनाई। चैत्र शुक्ल चतुर्दशी के दिन बौद्ध में आकर पूजा कर दिवंगत पितरों के नाम पर दिया जलाने, पूर्णिमा के दिन बालाजू 22 धारा में स्नान कर नागार्जुन के जामाचो और स्वयंभू में दर्शन करने का प्रचलन है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने बहुत ही संवेदनशील आंकड़ा जारी किया है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के मुताबिक ईस्टर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो यानी DRC में जारी संघर्ष ने बच्चों को काफी नुकसान पहुंचाया है। जनवरी और फरवरी महीने में ही हर 30 मिनट में एक बच्चे के साथ बलात्कार हुआ। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक यूनिसेफ ने बताया कि जनवरी और फरवरी में दुष्कर्म और यौन हिंसा के करीब 10,000 मामलों में से 35 से 45% पीड़ित बच्चे थे। यूनिसेफ के प्रवक्ता जेम्स एल्डर ने जिनेवा में बताया कि इस साल जब कांगो के पूर्वी हिस्से में लड़ाई सबसे ज्यादा तेज थी, तब हर आधे घंटे में एक बच्चे का रेप हुआ। एल्डर ने कहा कि ये इक्का दुक्का घटनाएं नहीं है, बल्कि एक गंभीर और लगातार चल रही समस्या है। छोटे छोटे बच्चों को भी इसका शिकार बनते देखा जा रहा है। ये हिंसा युद्ध का एक तरीका बन गई है, जिसे डर फैलाने के लिए जानबूझकर इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे परिवार और पूरे समुदाय बुरी तरह टूट रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि ये आंकड़े शायद पूरी सच्चाई नहीं दिखाते, क्योंकि बहुत से मामले डर, बदनामी और असुरक्षा की वजह से सामने नहीं आते। एल्डर ने दुनिया से अपील की है कि यौन हिंसा को रोकने के लिए मिलकर और तुरंत कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को बिना डरे अपनी बात कहने के लिए सुरक्षित और आसान रास्ते मिलने चाहिए। भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के मुद्दे पर हो रहे विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। मुर्शिदाबाद जिला प्रशासन के एक अधिकारी के हवाले से BBC ने बताया है कि इस हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है। वक्फ कानून के खिलाफ मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में पिछले 2-3 दिनों से प्रदर्शन चल रहे थे, लेकिन यहां शुक्रवार से हालात बिगड़ने लगे। अधिकारी ने यह भी बताया है कि इलाके में हालात धीरे धीरे काबू में आ रहे हैं। हालात पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस के अलावा BSF को भी इलाके में तैनात किया गया है। शुक्रवार दोपहर के बाद ये तनाव और ज्यादा भड़क गया और मुर्शिदाबाद में तोड़फोड़, आगजनी, राष्ट्रीय राजमार्ग और ट्रेन यातायात को रोकने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से कुछ ट्रेनों के परिचालन पर भी असर पड़ा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने रेसिप्रोकल टैरिफ से स्मार्टफोन और कंप्यूटर को छूट दी है। इसमें चीन को भी राहत दी गई है। अमेरिका की टेक कंपनियों ने यह चिंता जताई थी कि रेसिप्रोकल टैरिफ के कारण गैजेट के दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि इनमें से अधिकतर सामान चीन में बनते हैं। इस छूट में सेमीकंडक्टर, सोलर सेल और मेमोरी कार्ड भी शामिल हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सुकुमवासी समस्या समाधान करने के लिए आगामी संसद अधिवेशन में विधेयक लाया जाएगा, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। जनता में निहित सार्वभौम सत्ता पर प्रहार करने वाले पर कड़ी कार्यवाही करने की गृहमंत्री लेखक ने जताई प्रतिबद्धता। नेपाल में दर्ज नहीं रहे सामाजिक संचालनों को बंद करने की संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने दी चेतावनी। और अफ्रीकी देश कांगो में बच्चों के साथ होने वाली यौन हिंसा की दर उच्च है, यूनिसेफ ने दिया आंकड़ा। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।